साक्षी और मंथन आरव और आयु से मिलने के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल आए हुए थे। वहां उन्होंने साथ में डिनर लिया। बातों बातों में साक्षी और आयु के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी थी। साक्षी आयु को प्यार से समझा रही थी कि उसे हर हाल में आरव का साथ देना है। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे इस बात का प्रॉमिस किया कि वो आरव को कभी नहीं छोड़ेगी। वहीं उनसे कुछ दूर टेबल पर बैठा फैज़ उनकी बातें सुन रहा था। आयु ने जैसे ही साक्षी को प्रॉमिस किया, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। फैज़ अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। जाने से पहले उसने एक नज़र आयु के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। फैज़ ने आयु की तरफ देखकर धीरे से कहा, आप सिर्फ हमारी हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपका दिल जीत सकें। एक बार आपको यहाँ से ले जाएं, फिर जब आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको हमसे प्यार हो ही जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा किसी और से प्यार करने का। लेकिन आज आपने जो गलतियाँ की हैं, उसकी सज़ा भी आपको भुगतनी होगी। अपनी बात कहकर फैज़ वहाँ से चला गया। उसने वार्ड बॉय को फिर से आयु के पीछे लगा दिया था। आरव, आयु, मंथन और साक्षी अभी भी एक साथ बैठे थे। साक्षी से प्रॉमिस करने के बाद आयु ने उसकी तरफ देखकर पूछा, दी, आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? माफ कर दिया है, तभी यहाँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ, साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने देखा आयु चही से उदास लग रही थी। उसने आयु के गाल को सहलाते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान ही हैं, कोई भगवान नहीं। साक्षी की बात पर सहमति जताते हुए मंथन ने कहा, दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलती तुम्हारी अकेले की नहीं थी। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैं चाहता तो तुम्हें उसी दिन रोक सकता था जब तुमने पहली बार आरव से शादी करने के बारे में बताया था। अगर मैंने तुम्हें समझाया होता तो तुम आरव से शादी कभी नहीं करती। मंथन की बात सुनकर आरव ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और सिर हिलाकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये तुम इसे क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम हम दोनों की शादी नहीं होने देते? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने बस यही कहा कि मुझे इसे समझाना चाहिए था। अगर ये आपसे शादी करना चाहती थी तो प्यार से करती, ना कि कोई बदला लेने का सोचकर, मंथन ने जवाब में कहा। आरव को उसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने काफ़ी बेरुखी से कहा, तुम ना मेरी मिसेस खुराना से थोड़ा दूर रहो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो आरव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आयु ने आरव के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा। अयान ने उसे आधे घंटे का टाइम दिया था, उसमें से 15 मिनट बीत चुके थे। आयु को टाइम देखते हुए साक्षी ने नोटिस कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पता है, तुम्हें आरव के साथ में भी अकेले में टाइम बिताना होगा। मैं मंथन के साथ यहाँ से जा रही हूँ और अब हम कुछ दिन और रुकेंगे, इस बार अच्छे से गैदरिंग करते हैं ना? साक्षी की बात सुनकर आयु ब्लश करने लगी। आरव ने तुरंत साक्षी के प्लान पर हामी भर दी। उसने कहा, हाँ काफ़ी अच्छा आइडिया है, तब तक तुम मेरे भाई के बारे में भी सोच लेना। साक्षी ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जिसका मतलब साफ था कि उसे अयान के बारे में बात नहीं करनी थी। फिर उन्हें बाय बोलकर साक्षी और मंथन वहां से चले गए। उनके जाते ही आरव ने कहा, मिसेस खुराना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, बताओ 10 मिनट में क्या करना चाहोगी? मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम गाड़ी में चलते हैं, वहां तक जाने में 3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, बाकी के 7 मिनट तो मुझे एक अच्छा सा किस कर सकती हो, या फिर हम हक करके भी बैठ सकते हैं। आरव की बात पर आयु ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे आरव, सिर्फ बातें करेंगे। दूसरी बात, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रुकोगे, तो मुझे अकेले छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर मैं पूरी रात जागूंगी तो तुम्हें भी जागना होगा। अजीब टॉर्चर है यार, मैं तुम्हारे साथ पूरी रात जाग सकता हूँ, लेकिन इस पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं, बोलते हुए आरव ने आयु विंग की, जिस पर आयु ने उसके हाथ पर हल्के से मारा। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम ऐसा करो, अयान के केबिन में बैठ जाना, उसके पास ही चेंजिंग रूम है, मुझे चेंज करना है, फिर हम पेशेंट के रूम में चलेंगे। आयु ने आरव को सब कुछ समझा दिया था और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। कुछ ही मिनट में वो अयान के केबिन तक पहुंच चुके थे। वहां आते ही आयु ने आरव से कहा, अयान अपने केबिन में ही होगा, तुम बैठो, मैं चेंज करके 10 मिनट में आता हूँ। और कोई ऑप्शन भी नहीं है मिसेस खुराना, आरव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और फिर अयान के केबिन में घुस गया। बिल्कुल पागल है ये भी, जानबूझकर यहाँ पर आया था ताकि मेरे साथ टाइम बिता सके, और अब इसे इरिटेशन हो रही है, आयु ने सिर हिलाकर कहा और चेंजिंग रूम में चली गई। उसने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना हुआ था, नाइट ड्यूटी करते वक्त वो अपने कपड़े बदल सकती थी, इसलिए उसने चेंज करने का सोचा। चेंजिंग रूम में आने के बाद आयु ने अपने ऊपर का टॉप निकाला ही था कि तभी रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। आयु अपने मोबाइल को ऑन करके टॉर्च चला पाती, उससे पहले किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। आयु को लगा वो आरव है, तो उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आरव तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम्हें अयान के केबिन में होना चाहिए था, ना कि यहाँ। ऊपर से लाइट्स भी ऑफ कर दी, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, आयु बोल रही थी। तभी जिस इंसान ने उसे पीछे से पकड़ा था, उसकी पकड़ काफी टाइट हो गई थी। आयु ने महसूस किया कि वो आरव नहीं था। आयु चिल्ला पाती या कुछ पूछ पाती उससे पहले उसने उसका मुंह बंद कर दिया। वो उसे हर जगह से छू रहा था, वो भी गलत नीयत से। आयु ने जहान से ट्रेनिंग ली थी, वो उस इंसान को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आयु के पीछे फैज था, जिसे वार्ड बॉय ने आयु के चेंजिंग रूम में होने की बात बताई थी। उसने डुप्लीकेट की लेकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया था। फैज ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी किया और आयु के कान में धीरे से कहा, अपने हाथ पैर मारना बंद कीजिए, आप बहुत नाजुक हैं और हम बहुत टफ, आप कभी भी खुद को हमसे अलग नहीं कर पाएंगी, हमें महसूस करने दीजिए आपको। फैज किसी पागल की तरह रिएक्ट कर रहा था, वो आयु के बालों में अपना मुंह डालकर उन्हें स्निफ कर रहा था। फिर वो बोला, आपकी खुशबू हमें दीवाना बना रही है, पहली और आखिरी वार्निंग दे रहे हैं आपको, आप सिर्फ हमारी हैं तो आगे से उस आरव खुराना से दूर रहेंगी, आपको छूने का हक सिर्फ हमें है और आप सिर्फ हमसे प्यार करेंगी, आगे से हमने आपको आरव खुराना के साथ देख लिया है ना तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बोलते हुए फैज ने नाइफ से आयु की बाह पर बड़ा सा कट लगा दिया। आयु अभी भी सकते में थी, जिस हिसाब से फैज ने उसे पकड़ा था उसके बाद आयु को खुद से ही घिन महसूस हो रही थी। ऊपर से उसने उसके हाथ पर एक नया नया जख्म भी दे दिया था। आयु को वार्निंग देने के बाद फैज वहां से चला गया तो वही आयु अभी भी वहां पर बैठी रो रही थी। आरव, आरव कहाँ हो तुम, मुझे डर लग रहा है, आयु ने डरते हुए कहा। ऐसे में उसे अपने हाथ की चोट का भी ख्याल नहीं रहा, जिसमें से खून निकल रहा था। उसने अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, वो अभी भी ट्राउजर के ऊपर अपनी इनरवेयर में थी।
वहीं आयु को चेंजिंग रूम में गए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। आरव अयान के साथ बैठा उसके आने का वेट कर रहा था। आयु वापस नहीं आई तो आरव ने चिढ़ते हुए कहा, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल कपड़े चेंज करने में भी इतना टाइम कौन लेता है, वैसे इतना टाइम लेती तो नहीं है, मैं चेंजिंग रूम में जाकर देखता हूँ, अयान ने जवाब दिया। अयान चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था और आरव भी उसके पीछे ही था। वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा दरवाजा खुला था और अंदर की लाइट बंद थी। अयान ने अंदर जाकर लाइट ऑन की तो उन्होंने देखा आयु फर्श पर बैठी रो रही थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। आयु, आयु, आरव चिल्लाता हुआ आयु के पास गया, जिससे आयु का ध्यान टूटा, वो रो रही थी। आरव के पास आने पर आयु ने घबराते हुए कहा, आरव मुझे डर लग रहा है, वो हमें अलग कर देगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, उसने मुझे छुआ, वो मुझे कैसे छू सकता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोलते हुए आयु अपने हाथ अपनी बाहों पर घुमा रही थी, मानो वो फेस की टच को खुद से अलग कर रही हो। आरव ने देखा आयु के हाथ पर किसी अंगुलियों के निशान थे। आयु को ऐसे हाल देखकर आरव की निगाहें सर्द होने लगी। उसने अयान की तरफ देखकर कहा, मुझे अभी इसी वक्त CCTV फुटेज चाहिए, मैं अरेंज कर दूंगा, अयान ने जवाब दिया। उसे आयु की फिक्र हो रही थी तो वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। आरव के कहने के बावजूद अयान वहीं पर खड़ा था। आरव आयु के पास आया और उसे गले लगाकर शांत करना चाहता था। जैसे ही आरव आयु के पास आया उसने उसे जोर से दूर धकेल दिया। आयु चिल्लाते हुए बोली, दूर दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। आयु आरव को भी अपने पास नहीं आना देना चाहती थी। आयु को देखकर गुस्से में आरव की मुट्ठियां कस गईं। तभी उसने देखा अयान फर्स्ट एड बॉक्स के साथ धीरे से आयु के पास आया और उसके हाथ की चोट साफ कर रहा था। वो प्यार से आगे से बोला, चोट लगी है छिपकली, बस उसी को साफ कर रहा हूँ, जो हुआ उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक से देख, सामने भाई है, सुबह तो तुम्हें इनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए फ्री टाइम चाहिए था, अब इन्हीं को पास नहीं आने दे रही। अयान की बातों से आयु को एहसास हुआ कि सामने सच में आरव था, जिसे उसने किसी और को समझ दूर अकेला था। आरव ने आयु की तरफ देखकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ मेरे पास, मैं सब ठीक कर दूंगा। अयान ने आयु की चोट पर बैंडेज कर दी थी। फिर आरव ने आयु को उसका टॉप पहनाया और उसे रिलैक्स करके अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अयान की तरफ देखकर कहा, इसकी ड्यूटी किसी और को दे देना, तुम अच्छे से जानते हो कि ये ठीक नहीं है, पिछली बार भी इसके साथ गलत हुआ था और इस बार भी, अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों ही बार इसके साथ नहीं था, ना उनको छोड़ा था और ना ही इस इंसान को छोड़ने वाला हूँ। आरव ने अयान के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और आयु को लेकर वहां से चला गया। वहीं अयान वहां हैरान परेशान खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर में चेंजिंग रूम में कौन इंसान आ गया जिसे आयु के साथ बदसुलूकी की थी। वो दौड़कर तुरंत CCTV कंट्रोल रूम में गया, आखिर उस इंसान का पता जो लगाना था। देखते हैं आरव क्या करता है, अब तो उसे फैज के बारे में पता चल ही जाएगा, पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।